गुड मॉर्निंग, थोड़ी ठंडी गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, यस, क्योंकि बाबा ने हमें सुबह सुबह डबल ब्रेकफास्ट कराया है ना, दो नाश्ते कराए। कौन सा? पहले तो बाबा ने स्नान कराया अमृत वेले। सबने अच्छा स्नान किया, खुशी के पानी से, शक्ति के पानी से किया। जिसने किया वो ऐसे करें, खूब अच्छा स्नान करके फ्रेश हो गए। ओह ग्रेट, अपने लिए ऐसे ताली बजा सकते हैं। और जैसे ही हमारा स्नान पूरा होता है, बाबा ने हमको आत्मा को नाश्ता कराया, गरम गरम नाश्ता कराया, और शक्तिशाली बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए, फरिश्ता बनाने के लिए बड़ी अच्छी डोज दी। और उसके बाद फिर अभी तक भूखा रखा, नाश्ता कराया, फिर किचन में गए। वहाँ पर एकदम से बढ़िया बाबा की याद में बना हुआ गरम गरम शरीर को नाश्ता। उसके बाद तो कैसी आवाज़ होनी चाहिए, ऐसी गुड मॉर्निंग की आवाज़ होनी चाहिए जो रशिया तक पहुँच जाए। कर सकते हैं? चलिए 1 2 3 गुड मॉर्निंग। ओह, पहुंच गई। अभी वहां से फ्लाइट टाइम से आ जाएगी, क्योंकि अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे मालूम पड़ा कि वहां पर, क्योंकि अभी सर्दी शुरू हो गई है, और सर्दी माना बर्फ भी पड़नी शुरू हो गई है, तो जब बर्फ पड़ती है, मौसम अच्छा नहीं होता, तो फ्लाइट टाइम से नहीं जाती हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप क्लास में जाएंगे और वहाँ कुछ लेट होता है तो कैसे मैसेज मिलेगा। तो मैंने कहा लेट नहीं होगा, हम फ्लाइट को खींच लेंगे, तो आपकी गुड मॉर्निंग फ्लाइट को खींच लेगी। आज जिस टॉपिक के लिए मुझे निमंत्रण मिला है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम सब रूहानी विद्यार्थी हैं और हमें बहुत नशा है। बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा जो जीवन है उसका एक एक दिन भगवान स्वयं हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और हम अपने को बहुत लकी समझते हैं, ऐसा है ना? तो लेकिन उस पढ़ाई के अंदर जो चार सब्जेक्ट्स हैं, उन चार सब्जेक्ट्स की एक एक ऐसी प्राप्ति है, वो अगर हमारे जीवन में आ जाती है तो हमको बाबा टाइटल देते हैं स्पेशलिस्ट का। पढ़ो आप कितना भी, लेकिन किसी चीज पर जब फोकस हो जाते हैं, अच्छी तरह से उसकी गहराई में जाते हैं, उसमें मास्टरी कर लेते हैं। अभी हमारे सामने सविता दीदी थे, तो आपने सुना कि उन्होंने MBBS किया है, तो अर्थात मास्टरी, तभी तो किसी का इलाज कर सकती हैं। तो ऐसे ही हमने ज्ञान के सब्जेक्ट में कौन सी पॉइंट की मास्टरी की है, योग के सब्जेक्ट में कौन सी पॉइंट की मास्टरी की है, धारणा की कौन सी ऐसी बात है जो मेरा नाम लेके दूसरे उदाहरण दें, जब भी उस गुण का नाम आए वो कहेंगे हाँ हमारे पास ये जो है आत्मा उसकी ये विशेषता है। फिर सेवा में भी हम ऐसी कोई सेवा करें जिसमें हम एक्सपर्ट हों और उसके लिए हमेशा याद किया जाए। तो जब ऐसा कुछ पॉइंट की बात आती है तो हम कहते हैं फेवरेट। तो हमारा सारा जो ज्ञान है, जब हम बाबा से डायरेक्ट सुनते हैं, रोज की मुरली बाबा की सुनाई हुई मुरली है, तो निमित बनी हुई दादियां हमको सुनाती हैं, और फिर हम बाबा से भी सुनते हैं। तो जब हम बाबा से सुनते हैं ज्ञान मुरली, तो सुनते तो हैं, लेकिन सुनने से ज्यादा देखते हैं। और अगर सुनने को नहीं भी मिलता, आवाज नहीं भी आती, कई बार ट्रांसलेशन होती है, नहीं कनेक्शन होता, लेकिन बाबा को देखने से मन खुश होता है। अगर खाली ऑडियो सुनने को मिले, बाबा का वीडियो देखने को ना मिले, खुशी कितनी होगी? 50% हो जाएगी, है ना? और जब बाबा का वीडियो भी दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है तो कितनी खुशी होती है? दिखाइए कितनी खुशी होती है? इतनी होती है ना, एकदम दिल भर जाता है। क्यों? बाबा के आने से, बाबा के हमारे सामने बैठ जाने से जो दृष्टि को सुख मिलता है ना? तुझे देख देख कर सुख मिलता इलाही है। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा का जो चित्र है, साकार चित्र है, वो प्यार का जो सागर है, वो हमारे सामने, आंखों के सामने बैठ जाता है। तो बस देखते ही ऐसा लगता है कि अब हमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। उस समय जब बाबा हमारे सामने होते हैं, कोई है ऐसा जिसको कोई उल्टे संकल्प आ रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, सीट ठीक नहीं मिली है, या आज आराम नहीं किया, होता है कुछ ऐसा? मेरा मन कहता है नहीं होता होगा, मुश्किल तो बहुत होती है ना, इतना बड़ा हॉल है, लेकिन वो बाबा की उपस्थिति से, बाबा इतना प्यारा है, बाबा इतना अच्छा है, बस उसके आने से, हर्ष चेहरे से, तो इस बात में दुनिया के अंदर कितना भी भगवान से प्यार करने वाले लोग हैं, वो एक्सपर्ट नहीं हो सकते हमारे सिवाय, क्योंकि हमने वो चित्र साकार में देखा है। अभी बाबा 3 तारीख को साकार में आएंगे और ऐसे ही कितनी बार बाबा आ चुके हैं, तो हमारा जो दिल है वो देख देख करके, देख देख के वो जो खुशी महसूस करता है, तो हम खुद भी ऐसा चित्र बनाने में एक्सपर्ट जब होंगे, तब कहा जाएगा कि बाबा का आना सफल हुआ और बाबा से मिलना सफल हुआ। एग्री? समझते हैं? या बाबा का चित्र इतना सुंदर और हमारा चित्र, हमारे चित्र के अंदर दुख की भी लहर, कोई निराशा की भी लहर। तो रूहानी चैतन्य चित्रशाला सत्युग के आदि से लेकर के चित्र बनेगा, सत्युग के आदि से लेकर मूर्तियां बनेंगी कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, चित्र तो बनेगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण जब गद्दी पर बैठेंगे तो उनके सिंहासन के पीछे विष्णु का चित्र होगा, क्योंकि युगल रूप में वो राज्य करते हैं, तो वो चित्र होगा। तो बहुत वैरायटी चित्र तो नहीं बनते होंगे, लेकिन कुछ चित्र बनाने का जरूर वहां पर सिस्टम होगा। फिर धीरे 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 और ज्यादा जरूरत पड़ती है जब पूजा होती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो जो हिस्ट्री का जब चलन आता है, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, उसको याद करते हैं, उन चीजों को इकट्ठा करते हैं, तो आज की डेट में द्वापर युग से शुरू होकर के हजारों प्रकार के चित्र और हजारों प्रकार के म्यूजियम हैं। इवन जो लोग मर गए, राजा लोग मर गए, उनका जो स्केलेटन है, वो स्केलेटन हड्डियां जो है, उसका भी म्यूजियम है। कैन यू इमेजिन? उनकी कंकाल जो है, अब इतना डरावना म्यूजियम को देखने जाने के लिए मन करेगा? लेकिन बहुत लाइन लगती है, बहुत हाई प्राइस होता है। कुछ ऐसे म्यूजियम हैं जहां पर वो पुरानी चीजों को रखते हैं, कुछ ऐसे म्यूजियम हैं जहां पर सिर्फ चेहरे की तस्वीरें होती हैं, दुनिया भर के अच्छे से अच्छे चेहरे होते हैं। लंदन साइड में एक ऐसा म्यूजियम है जिसको मैडम तुसार्स म्यूजियम कहते हैं, दुनिया के वो लोग जिनके लिए पूरा विश्व वोटिंग करे, अर्थात सहमति दे कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, हमें इनसे प्यार है, उनकी तस्वीर। एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, लाखों लोगों से उसकी सहमति ली जाती है, उनकी इच्छा को पूछा जाता है, तब जाकर के वहाँ पर वो मूर्ति लगती है। लेकिन क्या ये दुनिया भर के जो म्यूजियम हैं, अच्छे से अच्छे चित्रकार हैं, एक एक चित्र जो है वो करोड़ों रुपए का बिकता है, क्या उन चित्रों को, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, क्या उन चित्रों को भगवान धरती पर आके एक भी बार देखते हैं? दुनिया के किसी भी म्यूजियम के किसी भी एक चित्र को, बड़े से बड़े चित्रकार को देखिए, क्या भगवान आकर के उस चित्र को देखते हैं? नहीं। किसको देखते हैं? किसको देखते हैं? चैतन्य रूहानी चित्रशाला। बाबा खुद आकर के अपने बच्चों का चित्र देखते हैं। और चित्र बनाने वाला कौन है? ये जो चित्र बैठे हैं वो चित्र बनाने वाला कौन है? मैं। ये जो चित्र है, हर एक अपने चित्र को देखिए, इस चित्र को बनाने वाला कौन? मैं। और बनाया कैसे, किस रंग से बनाया, किस ब्रश से बनाया और किस कैनवस पे बनाया, और बनवाया किसने, किसकी गाइडेंस में ये चित्र बनाया। तो हर ब्राह्मण आत्मा इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि ये जो चित्र है उसका आधार है हमारा चरित्र। ये जो पिक्चर बाबा ने आज दिन तक हमसे बनवाई है वो है चरित्र, और चरित्र का आधार है हमारे संस्कार, संस्कार और व्यवहार। जो मुरली को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं और पुरानी मुरलियां भी पढ़ते रहते हैं, उनको याद होगा एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे, खुशी के अनुभव की कलम से तकदीर की तस्वीर बनाओ, खुशी के अनुभव की कलम से तकदीर की तस्वीर बनाओ। मतलब ये तो फाइनल है कि ये जो चित्र रूहानी चैतन्य चित्र है जिसको भगवान खुद देखने आते हैं, उसका जो ब्रश है, ब्रश जो है वो खुशी से बना हुआ होना चाहिए, खुशी का ब्रश, खुशी के अनुभव की कलम से ही फिर बाकी की तस्वीर बनेगी। अगर कलम ही नहीं है, कोई भी कलम उठा करके शुरू भी नहीं कर सकते। तो अभी बाबा आ रहे हैं, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और चित्रशाला में हम पहुंच गए हैं, है ना, चित्र पहुंच गए हैं, और है भी ये दिवाली का मिलन। तो चित्र को बाबा के सामने सजाने से पहले, बाबा तो वीवीआईपी है ना, तो सजाने से पहले एक बार हमको सब अच्छी तरह से रीचेकिंग करनी है, देखना है कि क्या मेरा चित्र इस चित्रशाला में लगने के लिए तैयार है, जिसको कहते हैं ना, दिवाली से पहले सफाई भी करो तो पुताई भी करो। पुताई क्यों करते हैं, पुताई क्यों करते हैं? साल में एक बार, जिससे कि सारी जो गंदगी है, कीटाणु है, वो मर जाए। और इस रूहानी चैतन्य चित्र की पुताई कैसे होगी? पोता मेल देखने से। पोता मेल पुताई है, तो जो सारे साल का मेरा पोता मेल था, आज मैं बाबा के सामने आने वाली हूँ, लेकिन इस चित्र के अंदर सब कर्म इंद्रियों को, चेहरे को किस प्रकार से मैंने हर कमजोरी से, हर अवगुण से दूर रखा, वो पोता मेल। अगर किसी कमजोरी के कारण ये जो चित्र है थोड़ा स्पॉटेड हो गया है, कहीं ना कहीं कोई दाग पड़ गया है, तो उसको क्लीन करना है। लेकिन वो सब आगे जाने से पहले हम सबको अपने दिल से ये पूछना है, जो भी बैठे हैं, भाषा तो समझते ही हैं शायद, है ना, कोई ट्रांसलेशन वाले नहीं बैठे हैं, ये अपने दिल से पूछना है कि क्या सचमुच मुझे भगवान से खुशी की जो कलम है वो हमेशा के लिए मिल गई है और मैं खुश हूँ। अभी अभी संतुष्टता की क्लास सुनी, तो क्या मैं इतना खुश हूँ कि कभी कभी मेरी खुशी जो है कम होती है। अभी आप मुझे तो नहीं इतना देख पा रहे हैं सामने, लेकिन आप एक दो को देख सकते हैं। अभी आप एक दो को अपना चेहरा दिखाइए मुड़ करके, और वो दूसरा देखे खुशी पूरी है, ऐसे टर्न कर लीजिए अपने चेहरे को दूसरे की तरफ। आप इस हाँ हर कोई एक दूसरे की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ, स्क्रीन में नहीं देखिए, स्क्रीन में नहीं, चैतन्य पार्टनर जो हैं, हाँ देखिए, लग रहा है खुशी का चेहरा है सबका। आप जब सामने देख रहे थे ऐसे करके तो थोड़ा कम मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मैं ही तो देख रही थी आपको, लेकिन जब इस लक्ष्य से कि आपका सिर्फ आपका चित्र देखा जा रहा है, जब आपको ये समझ आया तो आपने ऐड की उसमें खुशी। तो खुशी की जो कलम है वो हमारे चित्र को आकर्षित बनाती है, हर्षित मुखता ही आकर्षण लाती है। कितना मैग्नेट पुल है बाबा के चेहरे में, है कि नहीं है? अच्छा, बाबा तो 3 तारीख को आएंगे और बाकी 27 दिन क्या होगा? बाबा नहीं है, तो बाबा नहीं है माना नास्तिक। तो संगम युग पर तो हम सब आस्तिक हैं, तो जब बाबा एक दिन आकर के वो हमें अपना चित्र दिखा जाते हैं कि बच्चे मैं ऐसा हूं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी के 27 दिन हम सब वैसा ही बाबा का चित्र अपने चेहरे पर बना करके रखें? ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है? नहीं तो हम बाबा को मिस करेंगे ना। 27 दिन बाबा नहीं है तो हर तरफ बाबा दिखाई दे, बाबा जैसा चेहरा दिखाई दे, खुशी दिखाई दे, शक्ति दिखाई दे, तो फिर क्या हो जाएगा? तब ही वास्तव में ये जो पूरा नवंबर का मास है, पूरे 12 मास हैं, वो संगम युग कहलाया जाएगा। तो ये जो सभा है, रूहानी चैतन्य जो चित्र है, ऐसे भी दुनिया में चित्रशाला है, म्यूजियम है, जहां पर लिखा होता है म्यूजियम कम शॉप। खाली म्यूजियम नहीं होता, वो चित्र लगा होता है, चीजें लगी होती हैं, और वो अगर पसंद आए तो आप वैसा खरीद करके भी जा सकते हैं। तो सिर्फ दर्शनीय योग्य नहीं, लेकिन काम के भी योग्य हो, कुछ फायदा भी हो समाज को ऐसा चित्र, तो दोनों बातें चाहिए, हर्षित मुख भी चाहिए और साथ साथ शक्तिशाली भी चाहिए। क्योंकि अच्छा सोचने वाले और अच्छा दिखने वाले, खुश रहने वाले, वो तो शोभा है दुनिया की, लेकिन अगर कुछ काम के लायक ना हो तो क्या करेंगे उस चित्र को ले जा करके? वो तो फिर म्यूजियम सिर्फ देखा और जी भरा। तो ये भी हमको बाबा के आने से पहले चेक करना है कि क्या सचमुच अभी तक मैंने अपना ऐसा चित्र बनाया है जो मेरे होने से, जहां भी मैं हूं, चाहे वो परिवार है, चाहे मैं जॉब करती हूं, चाहे मधुबन में कहीं सेंटर पर सेवाधारी के रूप में मैं रह रही हूं, क्या मेरे होने से औरों का कल्याण हो रहा है? जब बाबा आते हैं तो कितने सब लोग भाग करके आ जाते हैं, कितना खर्चा करके आते हैं, कितनी मेहनत करके आते हैं। तो जब एक बाबा के आने से इतना सब कुछ होता है, तो क्या मेरे आने से और मेरे रहने से जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनका कल्याण होता है? तो इसको कहते हैं लिटिल मोर, ऑर्डिनरी से थोड़ा ऊपर। एक चित्र होता है, ठीक है ना, बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन एक चित्र होता है विशेष, उस विशेष का महत्व होता है। कोई आए कोई जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई विशेष आता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या मेरे जीवन में अभी ऐसी एक विशेषता आई है जिसके कारण से मेरे आसपास प्रभु परिवार पले, शक्ति प्राप्त करे, सहयोग प्राप्त करे, खुशी प्राप्त करे? ये पोता मिल, क्या मेरे जीवन में बाबा की तो विशेषता देख रहे हैं ना, बाबा आता है पूरा संसार बन जाता है, मेरे होने से क्या किसका कल्याण हो रहा है? या मैं ऐसे अपना जीवन, मुझे ठीक खाने को मिले, मुझे ठीक रहने को मिले, मैं सब अच्छा पुरुषार्थ कर सकूं, ये कब तक अपने लिए सोचते रहेंगे? मेरा तो हो ही जाएगा, भगवान मुझे मिला, मुझे और क्या चाहिए, मेरा तो हो ही जाएगा। लेकिन हर सेकेंड दूसरों का ख्याल हो, ऐसा चरित्र ही बाबा जैसा चित्र बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें चित्र क्यों बनाना है? क्योंकि हमें अपने चित्र से बाबा की प्रतीक्षता करनी है, बाबा का चरित्र दिखाना है, यही है ना? क्योंकि सन शोज फादर, और सन कौन है? बाबा के बच्चे और बच्चियां हम हैं। और अगर मेरे चरित्र के अंदर ऐसी विशेषता नहीं है तो उसकी शॉपिंग कोई नहीं करेगा, अर्थात तो उसको पसंद कर ले और कहे कि मैं भी ऐसा बनूंगा, वो है शॉपिंग। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होती है ना, तो बाप वो चित्र देख के दूसरे ग्राहक आ गए, तो सबसे पहली उसकी निशानी है। हम सब जो भी यहां बैठे हैं ना, मैं समझती हूं, मुझे शायद पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 90% से भी ज्यादा हम जो भी यहां बैठे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसे ही आई हूं बाबा के पास, लेकिन मैं ये अच्छी तरह कह सकती हूं 90% से भी ज्यादा ऐसे बैठे हैं जो दूसरे का चित्र देख करके आए हैं। एम आई राइट? दूसरे को देख करके 90% से भी ज्यादा होंगे जो आए हैं, ऐसा? जो दूसरे को देख करके आए हैं हाथ खड़ा करें। किसी दूसरे का जीवन देखा, प्रेरणा बस देखा, आगे ज्ञान बहुत सुना, लेकिन आ गए, जस्ट रेज हैंड। और बाकी कैसे आए? कुछ ना कुछ तो देखा ना। तो इसलिए जो देख करके सौदा करते हैं वो पक्का सौदा होता है। वो महसूस होता है कि हाँ, अगर ये ऐसा चित्र है, मुझे ये अपने अंदर ये अच्छाई लानी है। तो ऐसा अट्रैक्टिव रूहानी जीवन बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को एक ट्रेनिंग दी है, और वो ट्रेनिंग रोज पॉलिश करते रहते हैं कि एक संस्कार है या एक कमी है, उसको टच नहीं करो तो आपका जो चित्र है वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा। वो कौन सी है? वो आदत है प्रभावित होने की और प्रभावित करने की। दूसरों को प्रभावित करना या दूसरों के प्रभाव में आ जाना, प्रेरणा और प्रभाव में अंतर होता है। जब हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और स्टेबल अपने गुणों में रहते हैं तो जरूर दूसरों को प्रेरणा मिलती है वो करने के लिए। लेकिन जब हम दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या दूसरों पर प्रभावित हो जाते हैं, खुद को नहीं बनाते हैं, तो हमारा चित्र हर्षित नहीं हो सकता, अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। अगर आप बाबा के चेहरे को, जब बाबा साकार में आते हैं, आप बाबा के चेहरे को देखते तो हैं ही, लेकिन फोकस हो जाएं, आप 10, 15, 20 वीडियो लेकर के, बस कुछ भी होता रहे, बाबा किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, लेकिन अति प्रेम में, बच्चों के अति प्यार में डूबे हुए रहते हैं। बाबा का प्यार और दृष्टि हर एक के प्रति एक जैसी है। कभी आपने देखा कि किसी से बाबा को ज्यादा प्यार है? बाबा की कोई फेवरेट लिस्ट है? है? जो 8 है वो बाबा की फेवरेट नहीं है क्या? 8 रत्न क्या समझते हैं? 108 बाबा की फेवरेट नहीं है क्या? बाबा जो है वो वंडरफुल मास्टर है, उसके 8 जो चित्र हैं एक्सेलेंट हैं, 108 बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाबा को सबसे बहुत प्यार है। बाबा एक एक बच्चे को वही शक्ति देते हैं, वही दृष्टि देते हैं जो 8 को देते हैं और 108 को देते हैं, अंतर नहीं है। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ऐसे बाप की संतान होने के नाते क्या अभी तक भी मैं छोटी 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 सी चीजों के कारण, किसी की आवाज से, कोई अच्छा गीत गाने वाला हो, कोई अच्छी अच्छी बातें सुनाने वाला हो, या कोई अच्छा नृत्य करने वाला हो, कोई अच्छा खाना बनाने वाला हो, छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के उनके बारे में संकल्प रचती हूं। इस बात को ठीक रीति से समझना जरूरी है। प्रेरणा हमें हर एक से लेनी है, इंस्पायर होना है, और इंस्पायर मना हम खुद वैसा बने। हमें किसी का गीत सुन के इतना अच्छा लगा कि हमने अगले 10 दिन अपनी आवाज को अच्छा करने के लिए मेहनत की, ये वंडरफुल है। किसी ने इतनी अच्छी चीज खिलाई, हमने प्रेरणा पाके उसको सीखा, बनाना सीखा, और हमने भी दूसरों को खिलाया, ये राइट है। लेकिन जिसने अच्छा बनाया, जिसने अच्छा गाया, जिसने अच्छा सुनाया, हम उसी को सोचते सोचते बाबा को भूल जाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रभावित होना। तो दूसरे तो आगे निकल जाते हैं और हम तो वहीं की वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा चित्र जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अब जो 3 तारीख की दिवाली तक जो मुझे अपना चित्र बनाना है, एक बहुत सूक्ष्म एग्रीमेंट अपने से करना है। कोई कैसा भी हो बहुत अच्छा है, हमारा परिवार का, ब्राह्मण परिवार का, विश्व का एक एक मेंबर अच्छे से अच्छा है और हमें बहुत खुशी है, लेकिन मेरे बाबा को खुशी तब होगी जब मेरा चित्र बहुत अच्छा बनेगा। हम सब इस म्यूजियम के विजिटर नहीं हैं, हम सब इस म्यूजियम के चित्र हैं। चित्र स्वयं में संपूर्ण होता है, चित्र दूसरे को नहीं देखता, विजिटर देखते हैं। तो ये पहली बात है, आदत है अपने चित्र को अच्छा बनाने के लिए, नो इन्फ्लुएंस। क्योंकि अगर अच्छे से प्रभावित होने की, ये मीठी आदत है बहुत, स्वीट होती है ना कोई चीज, उसको छोड़ना मुश्किल होता है। अगर ये आदत होगी तो इसके साथ साथ फिर बुरे से भी प्रभावित जल्दी हो जाएंगे। कोई अच्छे हैं तो भी सोचते हैं, कोई बुरे हैं तो भी सोचते हैं। तो ना तो प्रभावित होना है और ना किसी को अपने ऊपर प्रभावित करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम क्या करें दूसरे प्रभावित हो जाते हैं, नहीं। अगर हमारी स्मृति में हमेशा वो बनाने वाला, अगर बाबा हमको ये ज्ञान ना देते, अगर बाबा हमको ये समझ ना देते, तो क्या आज हमारा जीवन ऐसा होता? कोई एक भी ऐसा हो जो कहे नहीं, आई एम ओके बाबा के ज्ञान के बिना? नहीं। तो बनाने वाले ने मुझे ऐसा बनाया है ना, कहते हैं ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। तो इतना बाबा का प्यार हो कि वो आपको देख करके बाप पर प्रभावित हो जाए, वो है बाबा को दिवाली की गिफ्ट देना। देंगे? हाँ देंगे ऐसी गिफ्ट? वो बाहर नहीं मिलती है, वो तो हमें यहाँ ही बनानी पड़ेगी। ऐसा अच्छा चित्र बने, ऐसी मीठी बाबा की याद हो, प्रेम हो, जो बाबा से प्रभावित हो जाएं सब, ये गिफ्ट बाबा को देनी है। दूसरी बात कि कोई भी फरिश्तों के जो चित्र हैं, देवियों के जो चित्र हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आजकल तो एक प्रोफेशन हो गया है, बिजनेस हो गया है, हजारों प्रकार के फरिश्ते बनाते हैं। तो ये सब जो उनके चित्र हैं, इमेजेस हैं, कोई भी चित्र डराने वाला नहीं होता है, है ना? ऐसा लगता है कि वो अपना है। कोई भी देवी का चित्र होगा, फरिश्ते का चित्र होगा, वो ऐसा नहीं लगे कि ये तो फॉरेनर देवी है, ये तो मेरी देवी नहीं है, ये मेरा, ऐसा लगता है ये मेरा फरिश्ता है ना, तभी तो आप खरीद के ले आते हैं। हाँ वो तो पैसे के हिसाब से कोई महंगा फरिश्ता होता है, कोई सस्ता फरिश्ता होता है, लेकिन फरिश्ता अपना लगता है। तो अगर दूसरा जो ये संस्कार है, आदत है, डरना और डराना, डरना डराना, पहले कौन सी बात है? पहले क्या होता है? पहले हम डरते हैं या पहले हम डराते हैं, क्या समझते हैं आप? ऐसे लिप्स हिलाएंगे तो मुझे समझ आ जाएगा आपने। हम पहले डराते हैं दूसरों को या पहले हम खुद डरते हैं तो दूसरों को डराते हैं, क्या समझते हैं आप? अच्छा, जो समझते हैं पहले हम डरते हैं फिर दूसरों को डराते हैं, हाथ खड़ा करें। अच्छा ठीक है, ओके। जो समझते हैं पहले हम डराते हैं फिर डरते हैं वो हाथ खड़ा करें, कम है। अच्छा, जो इधर ना उधर, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होता है। आप देखिए कि दुख देने की जो बात आती है ना, ये तो हम सबको याद है, बाबा ने कहा है कि जो सुख है खुशी है वो आपका नेचर है, आपका स्वरूप है। तो दुख आपका स्वरूप नहीं है, तो आप दुख देते नहीं हो, पहले दुख लेते हो, राइट? तो दुख लिया तब दिया, नहीं तो मेरे पास था ही नहीं। तो ऐसे ही डरने में क्या हिसाब किताब है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है? हम डरते नहीं हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो है निर्भय अर्थात निश्चिंत। चिंता और भय हमारे स्वरूप में नहीं है, लेकिन हम अपने को जब देह समझते हैं ना, ये देह है। अब देह तो पता है एक दिन जानी है, तो जैसे ही देह समझा और ये मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है तो क्या हो गया? डर आ गया। तो हम डरे तो डराया। देह भान में निर्भय हो ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज है जो फाइनल है, बाकी सब चीजों का कुछ फाइनल नहीं है। वो ये है कि मृत्यु तो होनी ही है, और इतनी फाइनल चीज को भी हम भूल जाते हैं। आज सुबह से लेकर के 12 बजे तक कितनों को याद था कि एक दिन मैं यहां से चली जाऊंगी, कितनों को याद था कि एक दिन मुझे जाना है, एक भी नहीं है ना। अभी 7008 कितने भी बैठे हैं। कितनी फाइनल चीज है कि हमको एक दिन दुनिया से चले जाना है और हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने को देह समझ करके परमानेंट समझते हैं, हम ये सब ऐसे ही चलेगा। तो डर माना जो चीज जाने वाली है उसको पकड़ करके, उसके उसको आधार बना करके हमेशा के लिए अपने पास रखने का मिथ्या प्रयास, फॉल्स एफर्ट। जो चीज जाने वाली है आप उसको रोक नहीं सकते, पैसे से भी नहीं रोक सकते, ना बल से ना छल से। आप यमराज को छल सकते हैं कि आप थोड़े समय के बाद आ जाना, छल सकते हैं? नहीं। बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है, हम हमेशा स्कूल में वो बचपन में सुनाया करते थे कि कोई राजा था, वो इतने 100 साल जिया और उसको बहुत सब कुछ मिला। तो जब उसको लेने के लिए यमदूत आया तो उसने कहा कि कोई उपाय है कि मैं ना जाऊं? मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी, बहुत अच्छी कहानी है, किसको पर्सनल सुननी हो तो पीछे आके पूछ लेना। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु परमानेंट है। तो डर जब पहले मेरे में होता है कोई ना कोई चीज जाने का, तो हम दूसरों को डराते हैं। और डराते किस रूप से हैं? गुस्सा करके, आवेश में आकर के। तो अगर हमारे संस्कारों के अंदर, चरित्र के अंदर में गुस्सा है, आवेश है, तो हमारे नजदीक भी कोई नहीं आएगा। सब इधर उधर से रास्ता काट के चले जाएंगे, आप सामने जाएंगे वो पीछे बैक करके चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे चित्र के अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, शक्ति है, बाबा का चित्र में, बाबा के स्वरूप में कितना प्रेम है। अभी हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 तारीख को कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, बोले नो, मेरा बाबा आ रहा है, बाबा नहीं, मेरा बाबा आ रहा है। चाहे मुझे बाबा के सामने यहाँ आने का ड्रामा में पार्ट नहीं भी है, लेकिन हर कोई समझता है मेरा बाबा आ रहा है। कोई ये समझ रहा है कि किसी दूसरे का बाबा आ रहा है? क्यों? क्योंकि बाबा का चित्र जो है वो प्रेम से बना हुआ है। तो ये भी हमको चेकिंग करनी है दिवाली तक, बाबा के आने तक, क्या मैं जहां भी हूं, जिस स्थान पर हूं, जिस शहर में हूं, जिस देश में हूं, क्या सब लोग मुझे अपना समझते हैं? जैसे फरिश्तों को अपना समझते हैं, देवियों को अपना समझते हैं, क्या मुझे भी ऐसे सब अपना समझते हैं? और वो तब होगा जब मैं सबको प्रभु का, प्रभु की संतान माना अपना भाई बहन, अपना परिवार बहुत पक्का समझ करके, और परिवार माना बाबा ने कहा ना 5 अंगुलियां, परिवार में सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो कोई कैसा भी हो, जब बाबा को अपना परिवार पसंद है तो मैं कैसे ना पसंद कर सकती हूं? किसी के पास क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वो लिस्ट लेके आए, ये जो लिस्ट है ना, ये वो बीकेज है जो बाबा लाइक नहीं करता, ऐसा है? होगी तो सही शायद कहीं ना कहीं, हाँ, ये वो बीकेज हैं, और हम कितने बीकेज को लाइक करते हैं और लाइक नहीं करते हैं? ओपन नहीं करेंगे हम, लेकिन अपने व्यवहार से। और अभी अभी आप सुन रहे थे, मैं भी जब आ रही थी तो सुना मैंने, सविता दीदी बता रहे थे कि जो अच्छे हैं तो अच्छों को तो हम लाइक करते हैं, और जो कांटे हैं उनको लाइक नहीं करते। और बाबा क्या करते हैं? बाबा क्या करते हैं? अच्छों को भी लाइक करते हैं और कांटों को भी लाइक करते हैं। तो मेरा जो चित्र है वो ऐसा हो जो स्वप्न में भी, संकल्प में भी, किन्हीं भी आत्माओं के प्रति गुस्सा ना हो। और ऐसी पेंटिंग बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि संकल्पों को चेंज करना है। बाहर से तो ज्ञान बहुत है, मुख को भी ठीक रख लेंगे, लेकिन फरिश्तों की मूर्तियों में, चित्रों में, और देवियों के चित्रों में कोई ये जो बाहर का आकर्षण नहीं, वो जो उनकी एनर्जी है, उनके जो वाइब्रेशंस हैं, वो है कलर। ये जो प्रेम का रंग है, उस प्रेम के रंग से मन जो है हर आत्मा के लिए रंगा हुआ हो, अंडरस्टैंड? तो कर सकते हैं, कोई कैसा भी मेरे से व्यवहार करे, लेकिन नफरत, गुस्सा, 3 दिन पहले ही हमने मुरली सुनी है बाबा की, किसको याद है? 3 दिन पहले बाबा ने कहा था, नफरत नहीं करना है, किसी से भी नफरत नहीं करनी है। तो अभी ये तैयारी हम शुरू करें, तो बहुत जल्दी ये चैतन्य रूहानी चित्रशाला जो बन के तैयार होगी तो खुद भगवान उसको देखने के लिए आएंगे। हैप्पी करेंगे? ग्रेट, बहुत बहुत बधाई हो। तो भी ऐसी मीठी बाबा की याद में बैठें, एकदम सीधे हो करके, और पहले से ये मर्ज करें कि मैं अपने मीठे बाबा की बहुत ही मीठी विशेष और अविनाशी संतान हूँ। बाबा ने मुझे करोड़ों में से चुनकर अपना बच्चा बनाया है और मेरी तकदीर की तस्वीर बाबा मुझसे ही बनवा रहे हैं। वो चित्रकार स्वयं को मेरे सामने प्रत्यक्ष करके मुझे अति पवित्र, आकर्षित और हर्षित मुख वाला चित्र बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। सत्यता, निर्माणता, सहनशीलता, सहयोग, प्रेम, इतने सुंदर रंग दे करके वो चित्रकार मुझे देख रहा है कि कैसे इन सब रंगों से और उसके संग से मेरी तकदीर की तस्वीर बनती जा रही है। मेरे मीठे बाबा, आप तो मुझ पर अपने प्रेम का और ज्ञान का खजाना लुटा रहे हैं। मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मेरी ही तस्वीर बना रहे हैं। थैंक यू बाबा, आपकी दृष्टि मेरी सृष्टि बना रही है। मुझे इस चित्र द्वारा आपके खोए हुए बच्चों को आपके नजदीक लाना है। इस चित्र द्वारा आपकी प्रत्यक्षता करनी है।
सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए سب سے سہانے پل ہے زندگی کی.
چرائے ہوئے ہیں یہ سب سے سہانے.